अब यहाँ से एक अच्छे लीडर की खूबियाँ, अल्लाह ताला हर एक के अंदर ये डाले। आज उम्मत को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है कि जिनके अंदर ये नबी सल्लम जैसी सिफात हों। फबिमा रहमत मिनल्लाहि लिंत लहुम, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए नरम मिजाज वाके हुए हो, वरना अगर कहीं तुम तुंद खू और संग दिल होते तो ये सब तुम्हारे गिर्दो पेश से छट जाते। इनके कसूर माफ़ कर दो, इनके हक में दुआ मगफरत करो और दीन के काम में इनको भी शरीक मशवरा रखो। फिर जब तुम्हारा आज़म किसी राय पर मुस्तहकम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह को वो लोग पसंद है जो इसी के भरोसे पर काम करते हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं, और अगर वो तुमको छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। बस जो सच्चे मोमिन है इनको अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है इसमें। आप देखिए कि नबी सल्लम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ने नरमी दे दी उसको खैर कसीर दे दी। जिस घराने में नरमी डाल दी जाती है वहाँ खैर आ जाती है। तो मिजाज में नरमी होनी चाहिए। बच्चों से बात किया करें नरमी से किया करें, शौहरों से बात करें नरमी से करें, मुलाजमों से बात करें नरमी से करें। असूल सख्त, कवानीन नहीं तोड़ दें, आपने तरनी वाला नहीं बनना, बट स्पीकिंग स्टाइल, देखने का स्टाइल, चलने का स्टाइल नरमी का हो, क्योंकि नरम बंदा हर तरह के हालात को सह जाता है। हमारे अंदर जब सख्ती होती है ना तो बाहर भी नरमी आती है। और याद रखें कि जुबान की नरमी कहाँ से आती है, दिल से आती है। जब दिल गुस्से से भरा हुआ है, दिल कठोर है, तो हर बात में हमने ताना ही तो देना, इल्ज़ाम ही तो लगाना है। और मैं सोचती हूँ अगर नबी सल्लम जैसी खूबियाँ आ जाओ, आज हर तरफ इस्लाम के खिलाफ लोग बातें करते हैं, हम उनको बुरा भला कहने लग जाते हैं। हालांकि अगर हम सोचें, हम तकरीबन 2 बिलियन मुस्लिम हैं इस वक्त दुनिया में, अगर आज हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जेनरस, आप जैसे काइंड, आप जैसे सॉफ्ट, आप जैसे खिदमत गुजार, दूसरों की टेक केयर करने वाले होते तो दुनिया में लोग आज इस्लाम और मुसलमानों को अच्छा कहते कि बुरा कहते। ज़रूरत है इस वक्त के उस रोल मॉडल को कॉपी कर लें। देखिए कॉपी करना सबसे आसान होता है, किसी को ना करें, सिर्फ नबी सल्लम को कॉपी कर लें, दुनिया वाले खुद आपकी तरफ चल कर आएंगे इंशाल्लाह। अब नबी सल्लम पे एक इल्ज़ाम भी लग गया, ग़ज़वे उहद। आप देखिए मुनाफिकों के असल में पोल खुल रहे हैं, दिल में खोट होता है ना, बात बात पे शक आता है। शक में क्या हो गया, नाउज़ बिल्ला, एक चादर गुम गई माले गनीमत की, तो किसी ने कहा नबी सल्लम ने ले ली होगी ना। हालांकि आप ले लेते तो कोई बुरी बात ना होती, लेकिन अल्लाह ने आयतें उतार दी अपने नबी के बारे में। और वो क्या थी, वो माँ का नली नबी ये नहीं ये गुल, किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वो खयानत कर जाए, और जो कोई खयानत करे वो अपनी खयानत समेत क्यामत के रोज़ हाजिर हो जाएगा। फिर हर मुतनफ़िस को इसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर कुछ जुल्म ना होगा। भला ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स हमेशा अल्लाह की रज़ा पर चलने वाला हो वो इस शख्स कैसे काम करे जो अल्लाह के गज़ब में घिर गया हो, और जिसका आखिरी ठिकाना जहन्नम हो जो बदतरीन ठिकाना है। अल्लाह के नज़दीक दोनों किस्म के आदमियों में बहुत फ़र्क है, और अल्लाह सब के अमाल पर नज़र रखता है। दरहकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ने ये बहुत बड़ा एहसान किया। महसूस कीजिए इस एहसान को, अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी, किसी का एहसान नहीं जुतलाया सिवाय एक नेमत के जिसका अब जिक्र आ रहा है, और वो क्या है कि लकत मन अल्लाहमोमिन इस बाफ़ीम रसूल मिन अनफुसिहिम। दर हकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया है कि इनके दरमियान खुद इन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो इसकी आयतें इनको सुनाता है, इनकी ज़िंदगियों को संवारता है और इनको किताब और दानाई की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग सरीह गुमराहियों में पड़े हुए थे। क्या हमें नबी सल्लम की ज़ात एक नेमत लगती है? आज इंसानियत भटक रही होती है अगर नबी सल्लम मोहसिन इंसानियत बन के हमारे सामने ना आते। क्या आज उम्मत मुस्लिमा को वाकई अल्लाह के नबी की कदर है? हम नाते चंद पढ़ लेते हैं, आपके लिए दुरूद पढ़ लेते हैं, रबी अव्वल आता तो एक मिलाद करा लेते हैं कि इसे हक अदा होगा। गली गली फिरे, कूचा कूचा फिरे, पाँव में जूतियों में खून चिपक गया, हिजरतें की, कुर्बानियाँ की, अपना ज़ाती घर बार छोड़ा, सब किया। क्या आप मैं नबी की इन सुन्नतों पर अमल करने वाले बनते हैं? अल्लाह ताला में इस नबी का हक अदा करने वाला बनाए। फिर आप देखिए ये तीसरा मुकाम है जिसमें किताब के पढ़ने, तालीम और तज़किए का तज़किरा है, जो सूरह बकरा से चल रहा है। हज़रत इब्राहिम ने दुआ भी यही मांगी थी, और पीछे हमने ये पढ़ लिया कि अल्लाह ने नबी को ऐसा बनाया। तो आज भी उम्मत का तज़किया यही है। बिलीव मी, चार जुमलों की बात है सिर्फ उम्मत के मसलों का हल, जिसको आज इस बारे में हम देख रहे हैं। सिर्फ 3-4 जुमले चाहिए, पूरी उम्मत को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, पायलटों को और फकीरों को, और इसी तरह से जो जमींदार हैं, कारोबारी हजरात हैं, हर तबके फिक्र तक इस कुरान के पानी को आम कर दो, हदीस के जरिए हिकमतें सिखा दो, तस्किया कराओ, मरने का ख्याल हो, वइन्नमा तुवफ्फूना उजूरकुम का एहसास दिला दो। जब उम्मत का इस लिहाज से तस्किया होगा, सबका होगा, आप अपने अंदर फील करें। मुझे आपके कमेंट्स जो मिलते हैं, कल तीसरे पारे तक ही कई कमेंट्स मिल गए बाहर से, इधर उधर से, कि दुनिया बदल गई, दिल बदल गया, हाल बदल गया, क्या चीज़ की मैंने, क्या किया आपके लिए? सिर्फ 3 पारों का तर्जमा पढ़ा आपने भी, 3 पारों के बाद आपके अंदर तब्दीली आई। मुझे तो कई उम्मीदें लग गई आप लोगों से कि पता नहीं 30 पारों तक अल्लाह ने आपसे काम क्या ले लेना। क्यों कुरान पढ़ रहे हैं आप देखते हैं मेरी कितनी को बातें, आप अभी बाद में इसकी एडिटिंग करवा के पूछ लें, तर्जमा टोटल है और उसमें मेरे जुमले कितने हैं, मेरे अंदर ताकत नहीं है। ये अल्लाह का कुरान, आज जिसको बदलना है, जिसकी इसलाह चाहते हैं, जिसको सुकून देना है, जिसको युसारे उन फिल खैरात करना है, उसको कुरान से जोड़ दें। यहाँ आते हैं ना, घर वालों को उधर जोड़ कर आए। कल मैंने किसी आप में से एक माँ को कहा कि आप में से जिसके 10 से 12 साल के अंडर यंग बेटे भी हैं ना, उनको भी कल से लेकर आए। वीकेंड्स आते हैं आपके, बेटे बेटियां घरों में होते हैं, बेटियों को तो अब सारा महीना ही लेकर आए, लेकिन चलिए वो बच्चे जो बेटे जो समझने की उम्र में है, लाइए बिठाइए, पीछे की कुर्सियों पे बिठा दें। वो क्यों महरूम रहे? आप उनको घर पे मिक्सलर पे खोल कर दे दीजिए, क्योंकि ये कुरान ही उनको बदलेगा। और हर माँ का फर्ज है कि अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए, तो दुआ कीजिए कि ये कुरान आम हो, इसी से तस्किया होगा। वरना ना मांगने वालों को कभी मिला, ना उनकी कभी पूरी पड़ी है। मैंने तो ये देखे कि लोगों की खैर उभार दे, वो खुद आके पूछते हैं, बताएं हम क्या करें, बताएं हम आपके दीन के लिए क्या करें, बताएं किस चीज़ की दीन को जरूरत है। और दूसरी तरफ देखा गया कि लोगों को दरवाजे बंद करके रोक लेते हैं, जब तक पैसे नहीं देंगे हम आपको जाने नहीं देंगे। तस्किया कीजिए, अंदर की खैर बाहर ले आए, और कुरान ये काम बड़ा खूबसूरत करता है। अंदर खैर सबके होती है, आपका क्या ख्याल है सिर्फ आप में खैर है, जो बाहर फिर रहे हैं उनमें नहीं है? आपसे मेरे से कई गुना ज्यादा है, तभी शैतान अंदर नहीं उनको आने देता। इतने रोड़े अटकाएगा उन लोगों के यहाँ आने के रास्ते में, क्योंकि उसको पता है एक तो इसने कुरान सुन लिया, इसने तो रो रो के बुरा हाल कर देना। तो मेरा आपका काम है ऐसे प्यारे साथियों को प्यार से मोहब्बत से बुलाएं, ताकि उनकी खैर में आपका मेरा हिस्सा डल जाए। फिर आगे दोबारा फिर कुछ गम मनाने वाली कहानियां आ गई। अब अलम्मा साबत को मुसीबतन, और तुम्हारा क्या हाल है कि जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी तो तुम कहने लगे ये कहाँ से आई, हालांकि जंगे बदर में से दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथों फरीक मुखालिफ पर पड़ चुकी। ऐ नबी इनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, जो नुकसान लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंचा वो अल्लाह के इज़्ज़त से था। देखिए ठंडी सांस ले, सब कुछ भी कोशिश कर लेंगे ना, जो तकलीफ आनी है वो आएगी। माँ अपने बच्चे को संभालती रखती, आंखों के सामने देखती है, चोट लगनी होती लग जाती है, तो बस सुकून से रहिए, जो होना है वो होके रहेगा। और ये इसलिए था कि अल्लाह देख ले कि तुम में से कौन मोमिन है और मुनाफिक कौन। वो मुनाफिक कि जब उनसे कहा गया, अब देखिए निफाक से भरे हुए जुमले, आओ अल्लाह की राह में जंग करो या कम अज कम अपने शहर की मुदाफियत ही कर लो, तो कहने लगे, अब देखिए तनकीद, जजमेंटल। जब कोई दूसरा उनको कह दे कि चलो तुम ये काम कर लो, तो जवाब क्या था, अरे अगर हमें इल्म होता कि आज जंग होगी तो हम जरूर तुम्हारे साथ चलते। ये बात जब वो कह रहे थे, उस वक्त वो ईमान की बनिस्बत कुफर से ज्यादा करीब थे। जब काम करना ना होना तो बंदा ऐसे ही बहाने करता है, कहता है ये कोई जंग है, ये कोई दीन का काम है, ये कोई दीन का काम करने लिए ऐसे होते हैं, ये कोई खैर इनमें है, यानी अपनी जान बचाने के लिए दीन को मुजरिम करार देते हैं। अल्लाह कहते हैं असल में इनके अंदर कुछ और है, और वो अपनी जुबानों से जो बात कहते हैं ये इनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ वो दिलों में छुपाए हैं अल्लाह इसे खूब जानता है। ये वही लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे, और इनके जो भाई बहन लड़ने गए और मारे गए, इनके मुतलिक उन्होंने कह दिया अगर ये हमारी बात मान लेते तो ना मारे जाते। इनसे कहो अगर तुम अपने इस कौल में सच्चे हो तो खुद तुम्हारी मौत जब आएगी तो इसे टाल कर दिखाना। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं इन्हें मुर्दा न समझो, वो तो हकीकत में जिंदा हैं, अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से इनको दिया इस पर खुश व खुर्रम हैं, और मुतमईन हैं कि जो अहले ईमान इनके पीछे दुनिया में रह गए हैं और अभी वहाँ नहीं पहुँचे, इनके लिए भी किसी खौफ और रंज का मौका नहीं। आपने नोट किया कितनी दफ़ा इस बारे में गम की बात आ रही है, डिफरेंट डायमेंशन, गम गम गम। और आप देखिए कि इस हिस्से से हमें एक और बात भी पता चलती है कि कि जो मैदान जंग में जाते नहीं है ना, मैदान जंग को आप कह लीजिए कि अमली तकाजे दीन के नहीं पूरे करते, वो फिर बस घर बैठ के तनकीद बहुत करते हैं, वो हसरतें करते हैं, वो फिक्रें झाड़ते हैं। और दूसरी बात पता चलती है कि जिनको लोग कहते हैं हाय फलां मर गए, इतने मर गए, शहीद हो गए, आज भी आप सुनते हैं दुनिया में फलां मुल्कों में जंग लगी हुई है, मुसलमान मर रहे हैं। कभी इस एंगल से भी तो देखिए, अगर वो सच्चे मोमिन हैं, मर गए तो वो किधर जा रहे हैं? इस दुनिया में धक्के खाने की बजाय वो अल्लाह के पास पहुंच गए हैं। बस आप अपने आप को सीधा रखें, फिर इस दुनिया में रहें या वहां चले जाएं, आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। वो अल्लाह की नाम और इसके फजल पर शादों फरहा हैं, इनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह मोमिनों के अजर को जाया नहीं करता। और हदीस में आता है कि मोमिन की जान दुनिया से जब जाती है, उसी वक्त उसको जन्नत में उसका मुकाम दिखा दिया जाता है। आम लोग कब्र में रहते हैं, अच्छा जिसको भी कब्र से डर लगता है ना, वो इस बात को गौर से सुने, हर एक को डर लगता है, मोमिन के ऊपर कब्र का वक्त नहीं आता, वो अपना आलम बरजख भी जन्नत में गुजारता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ लोग बोर्डिंग पास लेने के बाद कुछ देर फिर लॉन्जेस में गुजारते हैं और बहुत ही थकन होती है घंटों के एतबार से, लेकिन कुछ लोगों को डायरेक्ट वहां से निकाल के आगे जहाज में फर्स्ट क्लास सीट में बिठा दिया जाता है, क्योंकि वो बिजी लोग हैं, वो बड़े लोग हैं। मोमिन के लिए दुनिया में काम का वक्त है, कब्र और बरजख सीधी जन्नत के लॉन्जेस में जाके गुजारेंगे। अल्लाह हमें इस काम की सच्चाई का यकीन दिला दे। और बात भी तो यही है कि अल्लाह मोमिनों के अजर को ज़ाया नहीं करता, फिर ईमान है, ईमान बढ़ा लें, बाकी काम अल्लाह पे छोड़ दें। ऐसे मोमिनों के अजर को, ये हैं जी हीरोज़ ऑफ दी पारा। अभी मैं आपको इनका वाक्या सुनाती हूँ, ज़रा पढ़ लेते हैं। ऐसे मोमिन कौन से लोग? अल्लज़ीन इस्तजाबु लिल्लाहि व रसूलि मिन बादी मा असाबहुमुल क़र्ह। ऐसे मोमिनों के अजर को जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा। इनमें जो अशख़ास नेकुकार और परहेजकार हैं, इनके लिए बड़ा अजर है। जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फौजें जमा हुई हैं, इनसे डरो, तो ये सुनकर इनका ईमान और बढ़ गया। दुआ करें हमारा भी धमकियां सुनकर ईमान और बढ़ जाए, पहला भी गया गुजराना खत्म हो जाए। और उन्होंने जवाब दिया, हसबुनल्लाहु व निमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। आखिरकार वो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ पलट आए। कौन थे ये लोग? जंग उहद ख़त्म होती है, 70 सहाबा शहीद हो चुके हैं, कई दिन की असाब शिकन जंग थी, 300 लोगों के छुटने का गम अपनी जगह, नबी सल्लम का दांत मुबारक शहीद, हौद की कड़ियाँ इधर लगी, यहाँ पे ये जो आँख का कोना होता है ना, यहाँ कुछ चेन के टुकड़े फंस गए, और एक सहाबी ने अपने दांत मुबारक इधर डाले और वो चेन खोली और नबी सल्लम आज़ाद हुए। पहला दांत टूट गया, दोबारा फिर किया, एक और दांत टूट गया। बाद में जब वो टूटे हुए दांतों से हंसते थे तो हसीनो जमील लगते थे। कहाँ हैं वो लोग आज? हलवा खाने वाले तो बड़े हैं, नबी का दांत टूट गया, उहद में हलवा बना लो 15 शाबान को, ये पता ही नहीं कि शाबान में नहीं, ये तो शवाल में हुई थी जंग। बहरहाल इन सारे मुश्किल हालात में अभी घर आए, आप देखिए कि दुश्मन वापस गया, हालांकि उस वक्त अबू सुफियान अपने लश्कर के साथ नुकसान दे सकता था मुसलमानों को, लेकिन उनको थोड़ा दूर जाके ख्याल आया कि अरे हमने तो आज मौका खो दिया, मुसलमान तो टूटे पड़े थे, तो हम जाते मदीना में हमला करते, मदीना पे कब्जा कर लेते, बस सोचा कि वापस चलते हैं। ये अपने तौर पे लीडर सोच रहा है, देखिए दो लीडर्स की कितनी प्यारी मुमासलत है। नबी सल्लम एक बेदार मगज थे, वो सुस्त करने वाले लीडर नहीं थे कि ना करना ना कराना, और करने वालों की भी टांगे खींचनी बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं करो, वो लोग लीडर नहीं होते, बस वक्त उनको लीडर बना दे तो बना दे, वरना असल लीडर वो होता है जो आपके अंदर काम करने का शौक डाल दे। अल्लाह के नबी के दिल में ख्याल आया, वो चले तो गए कहीं वापिस ही ना आ जाए, हम तो नहीं, चुप करो चुप करो, पहले ही थके हुए। फौरन एक आवाज लगाई, सब उठो हम पीछा करेंगे लश्कर का। अब होती बातें, ये बेतुके ये बेकार, घरों से निकाल दिया, हमें रुला दिया, हमारे घर में लाशें पड़ी हुई अभी, सब चल पड़े, कोई नहीं रोका। अल्लज़ीन इस्तजाबु लिल्लाहि व लिर्रसूल, ये है असल में चीज जो आज मिसिंग है, अकल नहीं, समय ना बताना, चल बड़े। अब जब इधर से चले तो वो जो लश्कर था वो लोग वापस आना चाह रहे थे, जब वो दुश्मन इधर आने लगे ना, उनके दिल में खुद ही रोब आ गया। अब उसको शर्म आ रही थी क्योंकि टूटे हुए मुसलमानों से भी वो डर रहा था, कहने लगा अब क्या करूं। एक शख्स उधर से आ रहा था, नौईम उसका नाम था, तिजारत के लिए मदीना जा रहा था, उसको थोड़े से पैसे दिए रिश्वत के, कहा जरा जाके ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में एक खबर तो फैला दो कि अबू सुफियान बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं। क्या होगा इससे कि वो डर जाएंगे, दुबक के घर भाग जाएंगे, जैसे आज का मुसलमान दुबकता है, तो फिर हमने आना तो सामने है नहीं, हमारी इज्जत रह जाएगी। वो शख्स गया, इधर मुसलमानों के करीब आया, कहने लगा तुम्हें पता है अबू सुफियान तो बहुत बड़ा लश्कर लेके आ रहा है, उसको तो पीछे से भी मदद मिल गई। उम्मीद क्या थी, ये सुन के सहाबा डर जाएंगे, कांपने लगेंगे, माफियां मांगेंगे। सहाबा ने कहा हसबुनल्लाहु निमल वकील फजादतहुम ईमाना। ये पढ़िए आपके सामने आयतें लिखी हुई हैं, अल्लाह ताला फरमाते फजादतहुम ईमाना, ईमान में बढ़ गए। कहने के हसबुनल्लाह व नेमल वकील, और चल पड़े। जब ये चल पड़े, वो जो दुश्मन का काफिला था उनको खौफ है, भाग गए, जो सामान था वो भी छोड़ गए। फन कलबु बिनेमत मिनल्लाहि फद, और वो सहाबा पलटे वहां से कैसे, आखिरकार वो अल्लाह ताला की नेमत और फजल के साथ पलटे। और सबसे बढ़ के देखिए वला यमसस हमसून, उनको कोई तकलीफ भी नहीं पहुंची। याद रखिए हमेशा अल्लाह के रस्तों में तकलीफें नहीं आती, हमेशा ओहद नहीं आती, ओहद तो एक ही आई थी, बाकी तो बदर से तबूक तक सब फतूहात थी। ये सिर्फ एक टेस्ट होता है मेरा आपका, और ये शुरू में होता है। कौन खुशी से निकलता है, कौन खुशी से इस काम में अपना हिस्सा डालता है, उसके बाद अल्लाह थाम लेता है। और फिर ऐसा हुआ, वहां से कुछ सत्तुओं का काम कर रहे थे लोग, कुछ यानी मुसलमानों को बहुत सारा माल गनीमत भी मिला, और अल्लाह की रजा पर चलने का शरफ भी इनको हासिल हो गया। ये है मेरे मालिक के रास्ते, दूर से पत्थर लगते हैं, करीब में फूल होते हैं। दूर से जो चीजें मुश्किलात की लगती हैं वो आसानियों की होती हैं। लोग कहते हैं फुलां बड़ा दीन का काम करता है, उसको क्या पता वो कितना आराम करता है। आप कहते हैं उसकी जिंदगी में बड़ी जिद्दोजहद है, आपको क्या पता उसको कितना सुकून मिलता है। तो याद रखिए, इस दुनिया के पीछे जितना मर्जी भाग लें, आपको ये कैफियत नहीं मिल सकती जो दीन के अमली तकाजों में मिलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बड़ा फजल फरमाने वाला है। अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो दरअसल शैतान था जो अपने दोस्तों से ख्वामखा डरा रहा था। अल्लाह करे आज के मुसलमान को भी यकीन आ जाए, कैसे ही झूठे प्रोपेगंडे करके मुसलमानों की हिम्मतों को तोड़ा चाहता है। बस तुम आइंदा लोगों से ना डरना, इंसानों से ना डरो, मुझसे डरना अगर तुम हकीकत में साहिब ईमान हो। फिर ईमान है, अंदर ईमान है बस, तो बाहर खैर है। और अंदर ईमान नहीं है तो आप वो खड़ा भी करेंगे तो खोखले दरख्त की तरह वो इंसान गिर जाएगा। आपका मेरा ईमान मुझे आपको अल्लाह के रास्तों में खड़ा करेगा, मुश्किलात में जमाएगा, आजमाइशों में हम खड़े हो जाएंगे, आंधी भी चले कि हम खड़े रहेंगे, हसबुनल्लाह व नेमल वकील। और नहीं है तो कुछ किए बगैर डर डर के दुबक दुबक के इंसान जो रहा सहा छोटा मोटा दीन का काम करता है वो भी छोड़ देता है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों से सीखने वाला बनाए। ये शख्सियात क्या पत्थर की थी, चूने के थे, कैसे थे? ये हमारी तरह गोश्त पोश के इंसान थे, और ये हर वक्त हर घड़ी तैयार, कामरान कामरान। क्या इनकी जिंदगियां थी, अंदर ईमान था जो सोने ही नहीं देता था। आप देखिए बच्चे खाना खा लेना फिर आराम से नहीं बैठते, माए कहते हैं अब इनको एनर्जी मिल गई, अब ये तड़पेंगे, है ना, खाते हैं, और जब भूख लगी तो ऐसे धुएं होके बैठे होते हैं, फिर माए इनको खिलाती पिलाती वो फिर माँ के सर पर सवार हो जाते हैं। ईमान ले आए आप बैठ ही नहीं सकते, अभी कर रहे हो, शाम को क्या करूं, रात को क्या करूं, सुबह क्या करूं। और अगर वो ईमान ही नहीं है जो आप कुछ कर नहीं रहे, तो दैट मीन खा रहे हैं तो आपकी ताकत नहीं है। खाना खाएं और ताकत ना आए तो इसका अंदर कोई नुकसान है, कोई अंदर रोग है, अल्लाह ताला हमारे अंदर के रोग खत्म कर दे। अब देखिए अगली आयत कितनी रेलिवेंट है कि वो मुसलमान हो, तुम दीन की भाग दौड़ से डरते हो, काफरों का हाल तो देखो, और वो कौन है, वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्री। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आज कुफर की राह में बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, इनकी सरगर्मियां तुम्हें आज़ुर्दा ना करें। क्या आज हम मुसलमानों के लिए ये पैगाम नहीं है? बिल्कुल है, आप क्यों फिक्र करते हैं, आपका रब जो आपके साथ है, ये अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह का इरादा ये है कि इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना रखे, और बिलाखिर इनको सख्त सजा मिलने वाली है। जो लोग ईमान को छोड़कर कुफर के खरीदार बने हैं वो यकीनन अल्लाह का नुकसान नहीं कर रहे हैं, इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। ये डील है जो हम इन्हें दिए जाते हैं, ये काफिर अपने हक में इसको बेहतरीन ना समझें। हम तो इन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं कि ये खूब बारे गुनाह समेट लें, फिर इनके लिए सख्त जलील करने वाली सजा है। अल्लाह हमें जिल्लत से बचा दे। और अब देखिए आखिरी कमेंट्स हैं गज़वे उहद पे, क्योंकि अब सूरत अपने इख्तिताम की तरफ जाने वाली है और ये सिलसिला रैप अप किया जा रहा है। क्यों ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ कैसे किस लिए होता है, इसका जवाब, मा कानल्लाहु लियज़रुल मोमिनीन अला मा अंतुम अलैहि, अल्लाह मोमिनों की हालत में हरगिज़ न रहने देगा जिसमें तुम लोग इस वक्त पाए जाते हो। कौन सी कैफियत, मिली जुली, कोई मोमिन है, कोई कम है, कोई थोड़ा है। अल्लाह कहता है मैं सबको इकट्ठा नहीं छोड़ता, मैंने क्लासिफिकेशन करनी है, मैंने तुम में से तुम लोगों को छांटना ही है। कैसे? वो पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहेगा, मगर अल्लाह का तरीका ये नहीं कि तुम लोगों को गैब पर मुत्तले करे। गैब की बातें बताने के लिए तो वो अपने रसूलों में से जिसको चाहता है मुंतखब कर लेता है। लिहाजा मुरे गैब के मामले में अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखो। अगर तुम ईमान और खुदा तरसी की रविश पर चलोगे तो तुमको बड़ा अजर मिलेगा। देखिए तीसरा मुकाम है तुमिनु व तत्तकू, पीछे क्या था, तस्बिरु व तत्तकू, ईमान सब्र और तकवा। मैंने शुरू में आपको तीन लफ्ज लिखाए थे, शायद आपको याद है कि नहीं है। ये तीन चीजें आज उम्मत को दे दें फिर आप आराम से मरें, आराम से सोएं। आप अपने बच्चों के ईमान तकवा सब्र को पक्का कर जाए फिर अल्लाह रखे उनका, फिर अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। बड़े से बड़े फितने भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, हमारी नस्लें उसमें पनप जाएंगी, लेकिन अगर अपने बच्चों को ईमान तकवा और सब्र के साथ नहीं पाला तो फिर तो कोई छोटा फितना भी उनके लिए बड़ा ही होगा। अल्लाह ताला बचा के रखे। अब आगे बुखल की बातें, आप देखिए जहां भी दीन के जुदोजहद है वहां माल की बात आएगी। लोग जान भी लगा देते हैं, माल नहीं लगाना चाहते। कुछ लोग माल लगा देते हैं, जान नहीं देते। तो अब यहां थोड़ी सी बातें बुखल के मुतालिक फरमाया, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा है, यानी साहिबे दौलत, अल्लाह ने जिनको दुनिया की आसूदगी दी है, और फिर वो बुखल से काम लेते हैं, वो इस ख्याल में ना रहें कि ये बखीली इनके लिए अच्छी है। नहीं, ये इनके हक में नहायत बुरी है। वो जो कुछ अपनी कंजूसी से जमा कर रहे हैं वही क्यामत के रोज इनके गले का तौक बन जाएगी। अल्लाहुम्मा तजल्ला मिन्हु, वो माल जिसके ऊपर ज़कात नहीं, वो माल जिसमें हराम की आमेजिश है, क़यामत के दिन गले का तौक बन जाएगा। ज़मीन और आसमान की मीरास अल्लाह ही के लिए है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। क्या पता चला कि तू बचा बचा के ना रख इसे कि तेरा आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। हम जो माल, जो दौलत, जो चीज़ें, जो अपनी नेमतें अल्लाह के रास्ते में लगाने से बचाते हैं, वो काम हमारे भी कोई नहीं आती। और रह गई बात, कुछ लोगों ने तो इतनी जुबान खोली, पीछे आपको याद है दूसरे पारे में आयत आई थी, मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना, तो उस पर सुनाया था आपको कि दो किरदार सामने आए थे, एक अबू दहदा जिन्होंने अपने घर समेत बाग को पेश कर दिया, दूसरा किरदार ये था जो अब आप और मैं पढ़ने लगे हैं। उसी आयत को सामने रखिए, लकद समय अल्लाहु कौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ने इन लोगों का कॉल सुना जो कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। देखिए जुर्रत, बदतमीजी, बेअदबी, इनकी ये बातें भी हम लिख लेंगे, और इससे पहले जो वो पैगंबरों को नाहक कत्ल करते रहे वो भी इनके नामे अमाल में सब्त है। जब फैसले का वक्त आएगा उस वक्त हम इनसे कहेंगे कि लो अब अजाबे जहन्नुम का मजा चखो, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, अल्लाह अपने बंदों के लिए जालिम नहीं है। क्या पता चला कि अपनी जुबान को संभाल कर बात करो, अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करने वाले क़यामत के दिन इसकी सजा भुगत के रहेंगे। जो लोग कहते हैं, अब ये एक और तासुब की बात, जो लोग कहते हैं अल्लाह ने हमको हिदायत कर दी है कि हम किसी को रसूल तस्लीम न करें जब तक कि वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न करे जिसे गैब से आकर आग खा ले, इनसे कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं जो बहुत सी रोशन निशानियां लाए थे, वो निशानी भी लाए थे जिसका जिक्र तुम करते हो। फिर अगर ईमान लाने के लिए ये शर्त पेश करने में तुम सच्चे हो तो इन रसूलों को तुमने क्यों कत्ल किया? अब ऐ नबी, अगर ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो बहुत से रसूल तुमसे पहले झुठलाए जा चुके हैं जो खुली खुली निशानी और सहीफे और रोशनी बख्शने वाली किताबें लाए थे। आखिरकार हर शख्स को मरना है, ये है आयत तदब्बुर, जरा सा सोचिए, आखिरकार हर शख्स को मरना है और तुम सब अपने पूरे अजर क़यामत के रोज पाने वाले हो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वइन्नमा तुवफ़ौन अजूरकुम यौमल क़ियामा, सब कुछ मिलेगा, कामयाब कौन है, फमन ज़ुख्ज़िहा अन्नारि वउद्खिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह हमें ये कामयाबियां दे दे। कामयाब दरअसल वो है जो वहां आतिशे दोज़ख़ से बच जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। रही ये दुनिया तो वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये एक महज ज़ाहरी फरेब की चीज़ है, और इसी फरेब के पीछे हर दिन सुबह से इंसान निकलता है, रात को धक्के खाकर आता है। इस वक्त भी आप देखिए कितने लोग हैं जो सिर्फ ये सोच कर कि उनको मजीद माल की ज़रूरत है, इल्म की दौलत को छोड़ रहे होंगे। आप देखिए कि क्या चीज़ है जो हमें दीन की दौलत को हल्का और घटिया करके दिखाती है, और दुनिया की दौलत जो पहले ही बहुत है उसको और बढ़ाने पे लेती है। वो यही एहसास है कि मरने के बाद पूरे पूरे अजर मिलेंगे। इन्नमा तुवफ्फौना उजूरकुम का यकीन नहीं है। अगर ये यकीन आ जाए तो इंसान सारी ताकतें और एनर्जियां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए लगा दे। अब आखिरी आयतें हैं सूरत की, और बहुत खूबसूरत आयतें हैं। इससे मजमून शुरू हो रहा है कि इस दुनिया के शहर से निकलो और अल्लाह के शहर में मुब्तला हो जाओ। मुसलमानों, तुम्हें माल और जान दोनों की आजमाइशें पेश आ कर रहेंगी। कितनी तसल्ली है आज हम सबके लिए। आज के बाद कोई मुसलमान ये ना कि फलां मुल्क में मुसलमानों पे बड़ी पाबंदियां, वहां बड़े मुसलात, कुछ भी नहीं है। बस ईमान कम है इसलिए महसूस ज्यादा होती है। असल बात यह है अल्लाह कहते आके रहेंगी, और तुम अहले किताब और मुशरिकीन से बहुत सी तकलीफदेह बातें सुनोगे अगर इन सब हालात में तुम सब्र और खुदा तरसी की रविश पर कायम रहो। चौथा मुकाम है आज के इस बारे का, सब्र और तकवा। ये पैगाम आम करने की जरूरत है कि मुसलमानों सब्र करो, तकवा इख्तियार करो, तो ये बड़े हौसले का काम है। इन अहले किताब को वहद भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने इनसे लिया था कि तुम्हें किताब की तालीमात को लोगों में फैलाना होगा, इन्हें पोशीदा नहीं रखना होगा, मगर उन्होंने किताब को पसे पुश डाल दिया और थोड़ी कीमत पर उसको बेच डाला। कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। तुम इन लोगों को अजाब से महफूज ना समझो जो अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं ऐसे कामों की तारीफ इन्हें हासिल हो जो फिल वाकई उन्होंने किए भी नहीं। ये भी एक नेगेटिव आदत थी जो आज के इस बारे में उम्मत मुस्लिमा को दिखाई गई। काम करके तारीफ कराना तो दूर की बात है, पसंद तो वो भी नहीं। ये कितनी बुरी बात है कि किया कराया कुछ नहीं और तारीफों के पुल बंधवा रहे हैं। ये चीज़ भी बाज़ दफ़ा इंसान के वक्त को ज़ाया करती है। हकीकत में इनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है। ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह है और उसकी कुदरत सब पर हावी है, यानी सारी कायनात में अल्लाह की कुदरतें फैली हुई हैं। ज़रा सा गौर करो, यह आखिरी रुकू जो है नबी सल्लम तहज्जुद के लिए जब उठते थे तो पढ़ा करते थे, और आपने फरमाया तबाही और हलाकत है उसके लिए जो इन आयतों को पढ़े और इसमें गौर व फिक्र ना करें। और आप देखेंगे कि इन आयतों में दुनिया की चीज़ों पर गौर करते करते आखिरत की चीज़ों तक बंदा पहुँचता है, और मखलूक पर गौर करते करते खालिक तक पहुँचता है। यही है इस्लाम का नज़रिया। आप साइंस पढ़ें लेकिन अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, ज्योग्राफी पढ़ें और अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। कैसे? इन्न फी खल्क़ समावाती वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लायातिल उलिल अलबाब। ज़मीन व आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी से आने में इन होशमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। कौन अकलमंद कौन है, या हम किसको अकलमंद कहते हैं? फरमाया अल्लज़ीना यस्कुरून अल्लाह क़ियामन व कुउदन व अला जुनूबिहिन, जो उठते बैठते और हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। दुआ कीजिए हम ऐसे हो जाए। अब ये क्या हर हाल में तस्बीह पकड़े रखते हैं? नहीं, ये उठना, ये बैठना, लेटना, मुराद है कि हर वक्त अल्लाह की याद, अल्लाह की धुन उनके दिमाग पर सवार होती है, और ज़मीन व आसमान की साख्त में गौर व फिक्र करते हैं। वो बेख्तियार बोल उठते हैं, परवरदिगार ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है इससे क्या बस काम करे, बस सर अब हमें दोजख के अजाब से बचा ले। तूने जिसे दोजख में डाला इसे दर हकीकत बड़ी जिल्लत और रसवाई में डाल दिया। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। दुआएं कर कर के आगे जाएं, अपने लिए मांगे कि अल्लाह हमारे लिए भी इस दोजख से बचना आसान कर दे। तूने जिसे दोजख में डाला इसे दर हकीकत बड़ी जिल्लत और रुसवाई में डाल दिया, और फिर ऐसे जालिमों का कोई मददगार ना होगा। मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बुलाता था और कहता था कि अपने रब को मानो, हमने इसकी दावत कबूल कर ली। बस है हमारे आका, जो कसूर हमसे हुए हैं इनसे दरगुजर फरमा, जो बुराइयाँ हम में हैं इनको दूर कर दे, और हमारा खात्मा नेक लोगों के साथ कर। खुदावंद, जो वादे तूने अपने रसूलों के जरिए से किए हैं इनको हमारे साथ पूरा कर, और क़यामत के दिन हमें रुसवाई में न डाल, बेशक तो अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है। अब देखिए, सुबह उठते ही बंदा जब ये मनाजात करता है, ये रोता है, तो अल्लाह को प्यार कितना उस पे आता है। सोचिए जरा, हम उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, और ही गहरी नींदों में चले जाते हैं। और कई तो सिर्फ उस वक्त अपनी गुनाह की महफिलों से उठते हैं जिस वक्त ये दुआएं मांगने का वक्त होता है। अल्लाह ताला हिदायत दे उन सबको। जवाब में इनके रब ने फरमाया, मैं तुम में से किसी का अमल ज़ाया करने वाला नहीं हूँ, ख्वाह मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे के हम जिन्स हो। लिहाजा जिन लोगों ने मेरी खातिर अपने वतन छोड़े और जो मेरी राह में अपने घरों से निकाले गए, और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, इनके सब कसूर मैं माफ़ कर दूंगा और इन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये इनकी जजा है अल्लाह के हाँ, और बेहतरीन जजा अल्लाह ही के पास है। ऐ नबी, दुनिया के मुल्कों में अल्लाह के नाफरमान लोगों का चलना फिरना आपको किसी धोखे में ना डाले, यानी डोंट इम्प्रेस विद देम, उनकी भाग दौड़ से खुश ना हो के वो बड़े कामयाब हैं। ये महज चंद रोज़ ज़िंदगी का थोड़ा सा लुत्फ है, फिर ये सब जहन्नुम में जाएंगे जो बदतरीन जाए करार है, बरक्स इसके जो लोग अपने रब से डरते हुए ज़िंदगी बसर करते हों। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल कर दे। इनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, इन बागों में वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह की तरफ से ये सामान्य ज़ियाफ़त है इनके लिए, और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वही सबसे बेहतर है। अहले किताब में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं और इस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ भेजी गई है, और इस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो इससे पहले खुद इनकी तरफ भेजी गई थी। अल्लाह के आगे झुके हुए हैं और अल्लाह की आयत को थोड़ी सी कीमत पर बेच नहीं देते। इनका अजर इनके रब के पास है और अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं लगाता। आखिरी आयत जिसमें पूरी उम्मत को एक चार नुकाती एजेंडा दिया जा रहा है, आज के दौर में या कल के दौर में जब भी मुसलमानों ने कामयाबी की ठाननी है उनको ये चार काम करने पड़ेंगे, और वो क्या? या अय्युहल्लज़ीना मनुसबिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, पूछे लाई हो, नहीं लाए तो दुआ करते हैं अल्लाह हमें ईमान दे दे। अल्लाह मज़य्यन बिज़ीनतिल ईमान। क्या करो? सब्र से काम लो। सब्र से काम क्या है? ज़ाती ज़िंदगी में सब्र करो, नमाज रोज़ा करने में सब्र करो, अल्लाह ने जो तुम्हें इबादात दी हैं उस पर सब्र करो। फिर दूसरी बात क्या है? वह साबिरू, साबिरू के बातिल परस्तों के मुकाबले में पमर्दी दिखाओ, यानी एक उम्मत बनने के नाते सब्र करो, एक दूसरे की बातों पे सब्र करो, दीन के तकाजों पे सब्र करो, और फिर उसके बाद वराबितू, और हक की खिदमत के लिए कमर बस्ता हो जाओ। एक ही पैगाम है सूरत आले इमरान का, हक की खिदमत करो। वो अल हक है जिसके नाम पर ये हक है, फिर उस आपका हक बनता है कि वो आपको माफ कर दे। रबते रखो, जुड़ के रहो, यूनाइट रहो, कटे कटे ना रहो। मुराबता कहते हैं जुड़ने को, एक नमाज से दूसरी नमाज के इंतजार को भी मुराबिता कहते हैं, और मुराबित के बारे में आता है कि उस पर कब्र का अजाब नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लोगों में शामिल कर दे। और चौथी चीज, अल्लाह से डरते रहो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। तो आप देखिए कि सूरत आले इमरान ने हमारा वक्त ज्यादा लिया, लेकिन ये बातें इतनी प्रैक्टिकल हैं कि इनको किए बगैर तो हम आगे जा ही नहीं सकते। हम कैसे एक उम्मत बनने के नाते पैगाम लेंगे? तो जितनी बात आज हमने पढ़ी उसका खुलासा क्या निकला कि उम्मत मुस्लिमा को क्या करना है? नंबर एक, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून। अपनी मनपसंद चीज़ों को रस्ते से हटाते जाओ, रुकावटों को दूर करो और अल्लाह के करीब आते जाओ। फिर दूसरी चीज़, इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, तकवा को थाम लो, और इतना तकवा जितना उस अल्लाह का हक बनता है कि तुम उससे डरो। फिर तीसरी चीज़, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, कुरान से जुड़ जाओ, अल्लाह की इस रस्सी को थाम लो। फिर अगली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी जो नहीं करनी? ला तफर्रकू, फिरकों में ना बटो, गिरोहों में ना बटो। फिर अगली चीज़ जो करनी है वो क्या? वल तक मिनकुम उम्मतु यदउना इलल खैर, लोगों को खैर की दावत दो, रब से जोड़ो, अल्लाह से जोड़ो, रसूल से जोड़ो। अगला काम, यामुरूना बिल मारूफ, मारूफ बातों का हुक्म दो, इल्लीगल चीज़ों से रोको, यनहौना अनिल मुनकर, यानी दुनिया में दावत का काम करो, लोगों को बुरे कामों के करने से रोको। और उसके बाद इज्तमाई ज़िंदगी की हमने कितने बेशुमार तरीके पढ़े कि इख्तलाफात से बचो, छोटी-छोटी बातों पे रिएक्शन नहीं करो, कट के नहीं रहो, जुड़ के रहो, उम्मत बनो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इन सारी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरत पूरी हो गई है तो मैंने इधर रोक लिया है, कल अल्लाह ने चाहा तो हम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.